From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City से मैं टेम्पल स्क्वायर सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 184वां वार्षिक महासम्मेलन है। इसमें गिरजे के जनरल अधिकारी और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे और सत्य का संगीत महामन मंडप गायक मंडली द्वारा होगा। इसका प्रसारण बना बिल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग गिरजे की प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, हम आपका अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर के जनरल सम्मेलन 184 के वर्ष में चौथे अधिवेशन में स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन के संचालन करता है, ने मुझे इस अधिवेशन का संचालन करने को कहा है। उन सभी का जो रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या सैटेलाइट द्वारा इस का संसार भर में प्रसारण करते हैं को हमारी शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम जनरल अधिकारियों और जनरल कार्यकर्ता का और जो इस सुबह में उपस्थित हैं उनका करते थे आनंद करते हैं। इस अधिवेशन के लिए संगीत मार्क विल्बर्ग के निर्देशन के अंतर्गत गायन मंडली के द्वारा किया जाएगा। रिचर्ड इलियट एंड्रू एंसवर्थ के साथ ऑर्गन पर साथ देंगे। गायन मंडली इस अधिवेशन का आरंभ करेगी और अब हमारे पक्ष के साथ गाकर गाएगी और प्रारंभिक प्रार्थना एल्डर एल विंटी क्लेंटन सर की अध्यक्षता के द्वारा दी जाएगी।
Thank you. Our beloved Heavenly Father, on this
हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, आज सबत के शानदार दिन में हम आपके पास आते हैं। हमारे जो हृदय हैं उसे देखने को तैयार है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा हमारे साथ हो। हम अपने दिमागों को और अपने हृदय को आपके दूर करते हैं ताकि आज के दिन हम जो कुछ भी हम सीखते हैं उसके हम प्रेरणा पाकर हम सीख सकें। और हम प्रार्थना करते हैं जो हमसे आज गाना गाएंगे बोलेंगे कि हम सबको ध्यान से सुने और हम आपके उसमें मजबूत होते जाएं और आपके पुत्र के यीशु मसीह की तरह बन सकें। आज के दिन को आपके अच्छे सेवक बनने का इस्तेमाल करें। हम यहाँ सब मिलने के सौभाग्य के लिए आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं परमेश्वर दुनिया भर में, और विनम्रता से इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
The choir will now sing.
गायन मंडली अब लेट अस ऑल प्रेस ऑन गाकर गाएगी। संगीत के बाद हम अध्यक्ष डीटर एफ उड्रॉफ प्रथम अध्यक्षता के द्वितीय सलाहकार को कृपा कर सुनेंगे। उनके पश्चात एल्डर एम लसर बालट 12 पैरेतों के परिषद से और बहन जीन स्टीफेंसन जनरल प्राथमिकता अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार होंगे।
Courage for Thank you, choir. What a blessing you are for us and for all who listen and hear you.
धन्यवाद देते हैं गायक मंडली के लिए. अपने जीवन में मुझे बहुत से ऐसे लोगों को मिलने का मौका मिला है जिनके दुख लगता है उनकी आत्मा की गहराइयों में समा गए हैं. इन क्षणों मैंने अपने प्रिय भाइयों और बहनों को सुना और उनके साथ अपने कष्टों में दुखी हुआ हूं. मैंने मनन किया है कि उनसे क्या कहूं और मुझे ये समझने में कठिनाई होती है कि कैसे उन्हें उनकी परीक्षाओं में दिलासा और सहारा दूं. अक्सर उनके दुख का कारण ऐसा होता है जिसे वे अंत समझ लेते हैं. कुछ प्रिय संबंध के अंत का सामना कर रहे हैं, जैसे किसी प्रिय की मृत्यु या परिवार के किसी सदस्य से मन मुटाव. दूसरे महसूस करते हैं कि उनकी आशा समाप्त हो रही है. विवाहित होने की आशा या बच्चे होने की आशा या रोग से मुक्ति पाने की आशा. हो सकता है अन्य अपने विश्वास के अंत का सामना कर रहे हैं जब वे संसार में भ्रामक और विरोधी बातें उनके विश्वास पर संदेह करने, यहाँ तक कि इसका त्याग करने पर मजबूर करती हैं जिसे वे कभी सच समझते हैं.
It can happen.
कभी न कभी मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी को ऐसा अनुभव होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है. हम अकेला, असंतुष्ट और भटका हुआ महसूस करते हैं. प्रत्येक की परिस्थिति अलग है और प्रत्येक जीवन की बातें विशेष हैं. फिर भी मैंने सीखा है कि कुछ है जो उस कड़वाहट को दूर कर सकता है जो हमारे जीवन को में आ सकती हैं. एक काम है जो हम जीवन में अधिक मधुर, अधिक आनंददायक और सुखमय बनाने के लिए कर सकते हैं. हम कृतज्ञ हो सकते हैं. उस व्यक्ति से परमेश्वर का धन्यवाद करने को कहना जो दुखों से बोझ से दबा है, ये संसार की समझ के विपरीत हो सकता है. लेकिन जो कड़वाहट भावनाओं का परित्याग कर कृतज्ञता और मिठास को अपनाते हैं, वे चंगाई, शांति और समझ को अनुभव कर सकते हैं. यीशु मसीह के शिष्य के रूप में हमें हर अवस्था में हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करने, प्रभु के लिए कृतज्ञता के गीत गाने और हमारे हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरे होने की आज्ञा दी गई है. परमेश्वर हमें कृतज्ञ होने की आज्ञा क्यों देता है? उसकी सभी आज्ञाएं हमें आशीषें उपलब्ध कराती हैं. आज्ञाएं हमारी स्वतंत्रता उपयोग करने और आशीषें पाने का मौका है. पिता जानता है कि कृतज्ञता की आत्मा का विश्वास करने से हमें सच्चा आनंद और भरपूर खुशी मिलेगी. लेकिन कुछ पूछ सकते हैं, मुझे किस वस्तु के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जबकि मैं अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं? हम किस बात के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं? इस पर ध्यान केंद्रित करना शायद एक गलत दृष्टिकोण है. कृतज्ञता की आत्मा का विकास करना कठिन होता है यदि हमारा कृतज्ञता का स्तर इस पर निर्भर करता है कि हमें कितनी आशीषें मिली हैं. अक्सर हमें मिली आशीषों को गिनना महत्वपूर्ण है और यदि कोई अपनी आशीषों को गिने तो जानेगा कि उसके बहुत सी आशीषें मिली हैं. लेकिन मैं विश्वास नहीं करता कि प्रभु हमसे यह आशा करता है कि हम कठिनाइयों के दौरान उसको कम धन्यवाद दें और जब हमारे पास बहुतायत से हो और हमारा जीवन आराम से हो रहा हो, हम उसको अधिक धन्यवाद दें. असल में अधिकतर धर्मशास्त्र संदर्भ वस्तुओं के लिए कृतज्ञ होने के लिए नहीं कहते, बल्कि कृतज्ञता की एक सामान्य अनुभूति या भाव रखने के लिए कहते हैं. उस समय कृतज्ञता प्रकट करना सरल होता है जब जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होता है. लेकिन उस समय क्या होता है जब कुछ भी हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता? मैं सुझाव देता हूं कि हम कृतज्ञता को इस एक स्वाभाविक प्रकृति समझें. जीवन को ऐसा रवैया जो हमारी वर्तमान परिस्थिति पर निर्भर ना करता हो। अन्य शब्दों में, मैं वस्तुओं के लिए कृतज्ञ होने के स्थान पर हमें अपनी परिस्थितियों के लिए, चाहे जैसी भी हो, कृतज्ञ होने पर केंद्रित होने का सुझाव देता हूँ। एक बैरे की एक पुरानी कहानी है जिसने ग्राहक से पूछा कि क्या उसे खाना पसंद आया था। ग्राहक ने उत्तर दिया, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन और अच्छा होता यदि बैरा उसे अधिक ब्रेड देता। अगले दिन जब वह आदमी फिर उससे खाने को गया, बैर ने ब्रेड को दुगना कर दिया। उसने दो स्लाइस के स्थान पर चार स्लाइस दे दिए, लेकिन वह आदमी फिर भी खुश नहीं हुआ। अगले दिन बैर ने ब्रेड को दुगना कर दिया, लेकिन वह आदमी फिर भी खुश नहीं हुआ। चौथे दिन बैरा उस आदमी को हर हालत में खुश करना चाहता था, इसलिए बैर ने 9 फुट का ब्रेड ली, उसे 2 टुकड़ों में काटा और मुस्कुराते हुए उस आदमी को परोस दी। बैरा ने उस आदमी की प्रतिक्रिया को जानने के लिए बेचैन था। भोजन करने के बाद वह आदमी खड़ा हुआ और बोला, हर दिन की तरह खाना बढ़िया था, लेकिन मैंने देखा कि तुमने फिर से ब्रेड के 2 स्लाइस देने शुरू कर दिए हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव हमारा है। आशीषें जो हमें नहीं मिली हैं, उनके आधार पर हम अपनी कृतज्ञता को सीमित कर सकते हैं, या हम नफी के समान बनना चुन सकते हैं जो अपनी हर परिस्थिति में हमेशा कृतज्ञ था। जब उसके भाइयों ने उस जहाज पर उसे बांध दिया जिसे उसने प्रतिज्ञा के प्रदेश में जाने के लिए बनाया था, उसके थकने और कलाइयां बुरी तरह से सूज गए थे और भयंकर तूफान ने उसे समुद्र की गहराइयों में डूबने के लिए भयभीत कर रहा था, फिर भी नफी ने कहा, मैंने अपने परमेश्वर की ओर नजरें उठाई और मैंने पूरे दिन उसकी प्रशंसा की, और मैं अपने कष्टों को ही कारण प्रभु के विरोध बड़बड़ाया नहीं। अय्यूब के समान बनना चुन सकते हैं जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी सब कुछ चला गया। फिर भी अय्यूब ने यह कहते हुए जवाब दिया, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हम मॉर्मन पथ प्रदर्शकों के समान बनना चुन सकते हैं जिन्होंने ग्रेट सॉल्ट लेक की और अपनी धीमी और कष्टपूर्ण यात्रा के दौरान गाते और नाचते और परमेश्वर की भलाई और महिमा करते हुए कृतज्ञता की आत्मा को बनाए रखा था। हम में से बहुत से यात्रा की कठिनाइयों में विमुख होते हैं, शिकायत करते हैं और परेशान हो जाते हैं। हम भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के समान बनना चुन सकते हैं जिसने लिबर्टी जेल में तकलीफ परिस्थिति में इन प्रेरणादायक शब्दों को लिखा था। प्रिय भाइयों, उन कार्यों को प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए जिसे करने में वह सक्षम है, और फिर उन्हें पूर्ण आश्वासन के साथ परमेश्वर के उद्धार को देखने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसे अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए समय दो। हम कृतज्ञ होना चुन सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह की कृतज्ञता हर हालत में प्रकट की जा सकती है, चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो रहा हो। ये निराशा, निरुत्साह और हताशा को कम कर देता है। ये कठिन परिस्थितियों में उतना ही विकसित होता है जितना कि सुखद परिस्थितियों में। जब हम अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, हम क्लेश के बीच सुकून का अनुभव कर सकते हैं। कष्ट में हम अपने हृदयों को प्रशंसा में ऊपर उठा सकते हैं। पीड़ा में हम मसीह के प्रायश्चित की स्तुति कर सकते हैं। घोर दुख में हम दिव्य प्रभाव की दिलासा और शांति को अनुभव कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि समस्या का समाधान होने पर ही हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, लेकिन यह दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। यदि हम जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हैं और परमेश्वर का उन सब के लिए धन्यवाद नहीं देते जो हमारे पास पहले से ही है, हम जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। विपत्ति के समय कृतज्ञता प्रकट करने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी परिस्थितियों में खुश हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी विश्वास की आंखों के द्वारा अपनी वर्तमान चुनौतियों से आगे देखते हैं। यह होठों की कृतज्ञता नहीं बल्कि आत्मा की कृतज्ञता है। यह वह कृतज्ञता है जो हृदय को चंगा और मन को विस्तृत करती है। अपनी परिस्थितियों में कृतज्ञ होना परमेश्वर में विश्वास का एक कार्य है। इसमें यह प्रकट करने की जरूरत होती है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उन अनदेखी बातों पर आशा करते हैं जो सच है। कृतज्ञ होने के द्वारा हम अपने प्रिय उद्धारकर्ता के उदाहरण का अनुसरण करते हैं, जिसने कहा था, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। सच्ची कृतज्ञता आशा और गवाही की अभिव्यक्ति है। ये उस सच्चाई को स्वीकार करने से मिलती है कि हम जीवन की परीक्षाओं को हमेशा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भरोसा करते हैं कि एक दिन समझ पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञता की हमारी समझ उन बहुत सी और पावन सच्चाइयों के विकसित होते हैं जो हम जानते हैं कि हमारे पिता ने अपने बच्चों के लिए सुख का महान योजना दी है, कि उसके पुत्र यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा हम अपने प्रियजनों के साथ हमेशा के लिए रह पाएंगे, कि अंत में हर रोग या अयोग्यता से मुक्त हमारे पास शानदार परिपूर्ण और अमर शरीर होंगे, और दुख और गम के हमारे आंसू अनंत खुशी और आनंद में बदल जाएंगे। पूरा नाप दबाकर और हिला हिला कर और उभरता हुआ हमारी गोद में डाला जाएगा। अवश्य ही इस प्रकार की गवाही ने उद्धारकर्ता के प्रेरितों को भयभीत संदेह करने वाले पुरुषों से स्वामी के भयरहित आनंदित संदेशवाहक बना दिया था। उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के पश्चात वे निराशा और दुख से भरे थे। जो हुआ था उसे वे समझ नहीं पाए थे, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। प्रभु उन्हें दिखाई दिया और घोषणा की, मेरे हाथों और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। जब प्रेरितों ने जी उठे मसीह को पहचाना, तब उन्होंने अपने उद्धारकर्ता के शानदार पुनरुत्थान को अनुभव किया था। वे बदल गए थे। कोई भी उन्हें उनके उद्देश्य को पूरा करने से रोक नहीं सकता था। उन्होंने साहस और दृढ़ता के साथ यातना, अपमान और मृत्यु तक को स्वीकार किया जो उन्हें उनकी गवाही के कारण दी गई थी। वे अपने प्रभु की प्रशंसा और सेवा करने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने हर स्थान में लोगों के जीवन को बदल दिया था। उन्होंने संसार बदल दिया था। उसी परिवर्तन को महसूस करने के लिए आपको प्रेरितों के समान उद्धारकर्ता को देखने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा द्वारा दी गई मसीह की आपकी गवाही आपको नश्वरता की निराशजनक अंत से हटकर उस चमकदार भविष्य को देखने में मदद कर सकती है जिसे संसार के मुक्तिदाता ने तैयार किया है। अपनी नियति के संबंध में जो कुछ हमें मालूम है, उससे यह समझा जा सकता है कि जीवन में जिन दुखद अंत का हम अनुभव करते हैं, वे हमें अस्वीकार्य लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कुछ है जो अंत का विरोध करता है। ये क्या है? क्योंकि हम अंतता के पदार्थ से बने हैं, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे अनंत लोग हैं, जिसका नाम अंतहीन है और जो अनंत आशीषों का वादा करता है। अंत हमारी नियति नहीं है। जितना अधिक हम यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में सीखते हैं, उतना ही अधिक हम महसूस करते हैं कि यहाँ नश्वरता में अंत सब कुछ का अंत नहीं है। ये केवल बाधाएं हैं, अस्थाई रुकावटें जो एक दिन उस अनंत आनंद के सामने बहुत छोटा प्रतीत होंगी जो विश्वासियों को दिया जाएगा। मैं अपने स्वर्गीय पिता को बहुत कृतज्ञ हूं का बहुत कृतज्ञ हूँ कि उसकी योजना में कोई अंत नहीं है, हमेशा एक ऐसी शुरुआत है जिसका कोई अंत नहीं है। भाइयों और बहनों, हम पास हमारे पास कृतज्ञता से भरे होने का कारण है, चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमें किसी बड़े कारण की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास आनंदित होने के महान कारण है। हम बहुत आशीषित होते हैं यदि हम अपने बेहतरीन जीवन में परमेश्वर के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। स्वर्ग हमारे पिता के प्रति आभारी होने से हमारी समझ व्यापक और दृष्टि स्पष्ट होती है। ये विनम्रता और प्रेरित करती हैं और अपने साथियों और परमेश्वर की सभी रचना के प्रति हमारी सहानुभूति को बढ़ाती हैं। मसीह समान गुणों के लिए कृतज्ञता एक उत्प्रेरक के समान है। धन्यवाद से भर हृदय सभी गुणों का जनक है। प्रभु ने हमें उसका वादा दिया है कि जो सब कुछ धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं उन्हें महिमापूर्ण बनाया जाएगा और इस पृथ्वी की वस्तुएं उन्हें दी जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि हम प्रतिदिन धन्यवाद का जीवन जिएं, विशेषकर नश्वरता में कष्टों के दौरान। मैं आशा करता हूं कि हम अपनी आत्माओं को हमारे दयालु स्वर्गीय पिता की कृतज्ञता से भरने देंगे। मैं आशा करता हूं कि हम अपने वचनों और कामों के द्वारा निरंतर और स्थिरता से स्वर्ग में हमारे पिता और उसके प्रिय पुत्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। मैं यह प्रार्थना करता हूं और अपनी गवाही देता हूं और आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
साठ साल पहले इस सितंबर को मैं अपने इंग्लैंड के मिशन से स्वाप कर घर लौटा था। तीन दिनों के बाद मैंने अपने मित्र के साथ यूटा की विश्वविद्यालय के हेलो डे डांस में उपस्थित होने गया था। उसने एक सुंदर बारबरा बॉबिन के बारे में बताया था। ये सोचता था कि मैं उससे मिलने की इच्छा रखता हूँ। वह उसे वहाँ ले आया और हम परिचय कराया और उसने और हमने डांस करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश यह था जिसे हम टैंग नृत्य कहा करते थे, जिसका अर्थ था कि आप उस लड़की के साथ तब तक नृत्य करते रहेंगे जब तक कोई आकर आपको बाहर निकाल दे। बारबरा जोशली और लोकप्रिय थी तो मुझे ही सिर्फ एक मिनट से कम का समय उसके साथ नृत्य करने को मिला था। उससे पहले ही एक युवक ने मुझे टैग आउट कर दिया था। यह मुझे मंजूर नहीं था। अपने मिशन में अनुसरण करने की महत्वा को सीखा था। मैंने उसका फोन नंबर लिया और अगले दिन ही मैंने उसे फोन कर दिया, परंतु वह स्कूल और सामाजिक कामों में व्यस्त थी। धन्यवाद करता हूँ अपने मिशन का। नाकामे की सूरत में भी कोशिश करते रहो। समाप्ता मुझे एक डेट मिल गई थी और उस डेट से और भी डेट हुई। किसी तरह मैं उस डेट्स के दौरान मैं उसे मनाने में कामयाब हुआ था कि मैं ही सच्चा और जीवित वापस आया हूँ, प्रचारक हूँ, कम से कम जहाँ तक वो सोच सकती थी। अब 64 सालों बाद यहाँ पर 7 बच्चे, बहुत से पोते पोती हैं, बहुत से परपोते परपोतियां और परपोते परपोतियां हैं जो इस सच्चाई के विशेषकर गवाह हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि संदेश कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको शायद उसे देने का कोई भी अनुकूल अनुसरण करने का मौका ना मिले। इसमें शायद मुझे साफ साफ अनुभूति का एहसास हुआ था आज मेरे पहले की दो जनरल सम्मेलनों के संदेशों पर अनुसरण करने का। अक्टूबर 2011 सम्मेलन में मैंने निवेदन किया था कि हम प्रभु के इस महत्वपूर्ण शब्दों का याद रखेंगे, क्योंकि मेरा गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर कहला जाएगा। इन शब्दों के साथ प्रभु ने साफ कर दिया था कि शीर्षक सिर्फ औपचारिक नहीं है, परंतु नाम जिसके द्वारा उसका गिरजाघर बुलाया जाएगा। उसने साफ साफ घोषणा की थी कि हम गिरजाघर को किसी अन्य नाम से संदर्भ नहीं कर सकते, जैसे मॉर्मन चर्च और एलडीएस चर्च। मॉर्मन शब्द इस्तेमाल गिरजाघर के सदस्यों के संदर्भ के लिए कुछ ही परिस्थितियों में उचित हो सकता है, जैसे कि मॉर्मन पद प्रदर्शक या संस्था, जैसे मॉर्मन गायल मंडली। गिरजाघर के सदस्यों को दूर दूर तक मॉर्मन से जाना जाता है और प्रक्रिया के साथ ही वे हमारे विश्वास के नहीं है। हमें शायद अपने आप को मॉर्मन कहलाना उचित लगे। हम इसे गिरजे के पूरे नाम के साथ जोड़कर प्रदान करते हैं। यदि सदस्य गिरजे के नाम को सही तरह से प्रयोग करना सीख ले, मॉर्मन शब्द के साथ जोड़कर ये रेखांकित किया जाएगा कि हम मसीह हैं, उद्धारकर्ता के गिरजा के सदस्य। भाई और बहनों, चलो हम अनुसरण करें और एक आदत बनाएं जो हमेशा इसे स्पष्ट करे कि हम अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर के सदस्य हैं। दूसरा संदेश है कि मुझे उसका अनुसरण करना चाहिए जिसे अभी पिछले जनरल सम्मेलन में पहुंचाया गया था, जब मैंने सदस्यों को प्रोत्साहित किया प्रार्थना कर एक व्यक्ति को निमंत्रण देने का, जिसे वह बड़ा दिन से पहले सुसमाचार की पुनस्थापना के बारे में सिखा सके। बहुत से सदस्यों ने मेरे साथ कुछ विशेष अनुभव बांटे, जैसे उन प्रचारकों के मौकों पर प्रभु से परिणामों का पूछते थे। एक लौटा हुआ प्रचारक, उदाहरण के लिए, विशेषकर उसने प्रार्थना उस एक के लिए की जिसके पास वह पहुंच सके। एक भूतपूर्व विद्यालय के कक्षा साथी का नाम उसके मन में आया था। वह फेसबुक के द्वारा उस तक पहुंचा था और से पता चलता है कि वह उसके जीवन का अर्थ है और उद्देश्य के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसने उसी समय अनुसरण किया था कि वह सच्चाई और खोज की रही है और दिसंबर में उसने बपतिस्म ले लिया। बहुत से सामान्य निमंत्रण की रिपोर्ट मुझे मिलती है, परंतु सिर्फ कुछ ही इस अनुसरण को करते हैं, जैसे हम इस भाई ने किया था। मैं अनुसरण करने के नियम का एक बड़ा विश्वासी हूँ, जैसे प्रचारक गाइड प्रीच माय गॉस्पल में कहा गया था कि निमंत्रण देना बिना अनुसरण के ऐसा है जैसे यात्रा की शुरुआत बिना खत्म करे की गई हो, या एक संगीत समारोह की टिकट लेना थिएटर में भीतर जाने बिना, काम पूरा किए बिना वचनबद्धता खोखली है। प्रीच माय गॉस्पल हर एक को कैसे सिर्फ निमंत्रण नहीं देना है अपने निमंत्रण पर, परंतु उसे कैसे अनुसरण करना है को सिखाना है। प्रचारक कार्य के उद्देश्य की परिभाषा है निमंत्रण देकर दूसरों को मसीह के पास लाने में यीशु मसीह और उसके पराशर पश्चाताप, बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का उपहार और अंत तक बने रहने में विश्वास करके पुनस्थापित सुसमाचार को ग्रहण करने मदद करनी है। सच में निमंत्रण देने का कार्य का भाग है, परंतु ध्यान दें, सदस्यों को प्रचारक काम के लिए बहुत कुछ करना है। साधारणता से लोगों को निमंत्रण देकर प्रचारकों को सुनने के सिवाय इसमें प्रचारकों के साथ विश्वास में उन्नति का अनुसरण करना, पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित करना, अनुबंध बनाने के लिए तैयारी करना और अंत तक बने रहना भी शामिल है। प्रेतों के काम पुस्तक में इस अनुसरण करने के नियम दर्शाए गए हैं। पतरस और यहुन्ना तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यहुन्ना को मंदिर में जाते देखा तो भीख मांगी। पतरस ने यहुन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह उसने उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यह शक्तिशाली निमंत्रण था प्रभु के सेवक का, था कि नहीं? परंतु पतरस निमंत्रण के साथ रुका नहीं था। धर्म कथा हमें आगे बताती है कि उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। दूसरे शब्दों में पतरस ने अपनी पुरोहिताधिकार की याचना सीधे से नहीं की और पुरुष को उठाया और चलाया फिराया। उसने अपने निमंत्रण का अनुसरण आदमी तक पहुंचने के द्वारा दाहिने हाथ से उसे उठाया और उसे ऊपर उठाया और फिर उसके साथ मंदिर में जाने के द्वारा भी किया था। आत्मा में पतरस का उदाहरण क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि हम अधिक सरलता से प्रचारक कार्य में शामिल हों, अपने भय को सच्चे विश्वास द्वारा बदलने के साथ किसी को कम से कम साल में 4 बार बुलाकर पूरे समय के प्रचारकों द्वारा सिखाने से कर सकते हैं। वे आत्मा की सच्चाई साथ और प्रभु की हार्दिक प्रेरणा के द्वारा शिक्षा देने की तैयारी करते हैं। एक साथ हम निमंत्रण का अनुसरण करके दूसरों के साथ हाथ मिलाकर उन्हें ऊपर उठाकर और उनके साथ आत्मिक यात्रा में चलना है। आपके इस कार्य में सहायक करेंगे मैं सभी सदस्यों का आमंत्रण देता हूं। आपकी हाल ही की कोई भी बुलाहट या गिरजी की कोई भी स्तर की गतिविधि क्यों ना हो, प्रीच माय गॉस्पेल की कॉपी लें। यह हमारे विभाजन केंद्रों में और बिना मूल्य ऑनलाइन पर उपलब्ध है। यह प्रचार कार्य के लिए गाइड बुक है, जिसका अर्थ है हम सब के लिए गाइड बुक। उसे पढ़ें, अध्ययन करें और लागू करें जो आपकी सीखने समझाने में मदद करेगी कि कैसे आत्माओं को मसीह के पास निमंत्रण और अनुसरण करने के द्वारा लाया जा सकता है। जैसे अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने कहा था, अब समय है सदस्यों और प्रचारकों के लिए एक साथ आने का, साथ काम करने का, प्रभु की वाटिका में परिश्रम कर उन तक आत्माओं को लाने का। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रभु ने उस प्रार्थना का उत्तर हमारे समय में संसार के इतिहास में पूरे समय के प्रचारकों के भव्यतात की संख्या के साथ देकर की है। इस नए विश्वासी सेवकों की लहर में प्रभु ने हमें दूसरा मौका दिया है उसकी आत्मा को इकट्ठा कर सहायता करने की। यहाँ पर वास्तविक तरीके हैं सदस्यों के लिए जो हमारे असाधारण प्रचारकों की मदद और समर्थन देते हैं। उदाहरण के लिए आप प्रचारकों को बताएं कि हम प्रीच माय गॉस्पेल का अध्ययन कर रहे हैं और हम उनसे आप दिखाने के लिए पूछें कि वह अपने अध्ययन करने से क्या सीख रहे हैं। जैसे आप दूसरों के साथ बांटते हैं सदस्यों और पूरे समय के प्रचारकों के बीच भरोसा वास्तव में बढ़ेगा जैसा प्रभु ने आज्ञा दी थी। परंतु हर आदमी और औरत प्रभु परमेश्वर यहाँ तक जगत का उद्धारकर्ता के नाम में बोलेंगे और देखो मैंने तुम्हें गवाही और चेतावनी देने के लिए भेजा है और हर व्यक्ति के लिए जिन्हें चेतावनी दी गई है वे अपने पड़ोसी को चेतावनी दे। भाइयों और बहनों, क्या आप प्रभावित होने की कल्पना कर सकते हो यदि परिवार और मित्र उन बातों को शामिल करें जिसे वे अपनी व्यक्तिगत प्रीच माय गॉस्पेल अध्ययन करने से सीखते हैं, उनके पात्र में और ईमेल जिसमें वे पूरे समय के प्रचारकों को करते हैं। क्या आप आशीषों का चित्रण कर सकते हैं जो कि परिवारों में आएगी जब वे जानेंगे और अच्छे से समझेंगे कि उनके पुत्र और पुत्रियां अपने मिशनों में क्या सीखेंगे और शिक्षा देंगे, और क्या आप परिषद की महिमा की अनोखी तरह से बाहर निकलेंगे। वे हमारी होगी व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर से। उद्धारकर्ता का सभी के लिए वादा है अनुसार वह जो आत्मा को उस तक लाने का निमंत्रण नहीं गवाही देगा और उस पर आमंत्रण के अनुसरण करेगा। तुम आशीषित हो, प्रभु ने भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के द्वारा कहा था, गवाही जिसे आप देते हैं स्वर्ग में लिखी जाती है क्योंकि स्वर्गदूत उसे देखते हैं और वे आप पर आनंदित होते हैं। और आपके पापों को क्षमा किया जाता है। मैंने तुम्हारे पाप तुम्हारे लिए क्षमा किए इस आज्ञा के साथ कि तुम सर्वदा अटल रहो, अपनी गवाही दो संसार से उन बातों की जिससे तुम संपर्क करते हो। यदि हम अनुसरण करते हैं, प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैंने अनकही खुशी देखी है और जो कि गवाही के साथ थी, प्रचार का आग्रह और संसार भर के गिरजे के सदस्यों ने विश्वासी अनुसरण करने का। जबकि अर्जेंटीना में हाल ही में मैंने सदस्यों से किसी एक को गिरजा ने इस जनरल सम्मेलन से पहले लाने के लिए प्रोत्साहित किया है। एक 8 साल का नाम जोशुआ ने सुना था और उसने अपने प्रिय मित्र और उसके परिवार को अपने वार्ड बुएनोस के ओपन हाउस में आने का निमंत्रण दिया। मैं खत से पढ़ता हूँ जो मैं अभी प्राप्त किया है कि जोशुआ में जोशुआ निमंत्रण और विश्वासी अनुसरण करने का व्याख्या बताई है। हर एक क्षण जोशुआ भागकर दरवाजे पर जाता देखने के लिए कि वे आ रहे हैं। उसने कहा कि वह जानता था कि वो आएंगे। शाम बढ़ती जा रही थी और जोशुआ का मित्र नहीं आया, परंतु जोशुआ ने हिम्मत नहीं हारी। वह ईमानदारी से हर लम्हा सामने के दरवाजे से देखता रहता था। अब समय था आरंभ करने का, जब जोशुआ ने उछलना शुरू किया और सूचित करने लगा, वे यहाँ है, वे यहाँ है। मैंने उठकर देखा, पूरा परिवार गिरजाघर में आ रहा था। जोशुआ भागकर उनका अभिनंदन करने लगा और अपने मित्र से गले लगा। वे सब अंदर आए और लगा कि उन्होंने ओपन हाउस का पूरा आनंद उठाया था। उन्होंने कुछ छोटी पुस्तिका उठाई और बहुत सा समय परिचय करने के साथ उन नए दोस्तों से मिलने में लगाया। ये देखने बहुत अच्छा लगा, इस छोटे से लड़के के विश्वास का, और जानते हुए कि प्राथमिक के बच्चे की प्राचारक हो सकते हैं। ये मेरी गवाही है कि जब हम अपना काम एक साथ करने में किसी की खोज को आमंत्रण दें, भरोसे के साथ, अनुसरण के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर उनके ऊपर मुस्कुराहट से देखता है और बहुत से लोग उनके पर्पस को ढूंढ पाएंगे यीशु मसीह की गिरजाघर में। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और सबको अपने आशीष से बरकत दे। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Few feelings compare with the tender
emotions. जैसे हम प्रभु में अधिक आशा
One of my brothers experienced this feeling in an especially poignant way. His first little son was
उसका पहला पुत्र समय से पहले जन्मा और उसका वजन केवल 2 पाउंड 14 आउंस था। हंटर ने अपने जीवन के पहले 2 महीने अस्पताल नोइनेटल गेन केयर यूनिट में बिताए। वो महीने सारे परिवार के लिए एक नाजुक समय था जिसमें हमें आशा करते और प्रभु से विनती करते रहते थे। नन्हा हंटर बहुत निर्भर था। वह संघर्ष कर रहा था उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो जीवित रहने के लिए आवश्यक थी। उसके स्नेही पिता का हाथ अक्सर अपने नन्हे पुत्र के हाथ तक पहुंचता, अपने छोटे से कमजोर शिशु को प्रोत्साहित करने के लिए। और यह सब परमेश्वर के बच्चों के लिए है। हमारा स्वर्गीय पिता हम में से हर एक तक प्रेम से पहुंचता है, जो कि हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। उसकी शक्ति सब वस्तुओं पर है और हमारी मदद करना चाहते हैं, सीखने में, बढ़ने में और उसके पास वापस लौटने में। यह परिभाषित करता है हमारे पिता के उद्देश्य को, मनुष्य की अमरता और अनंत जीवन को पारित करने में। जैसे ही हम प्रभु में अधिक आशा और विश्वास विकसित करते हैं, हम उसकी आशीष और मुक्ति करने की शक्ति तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं। मॉर्मन की पुस्तक के हर पन्ने में इस सुंदर विषय को बुना गया है जिससे प्रभु की शक्ति उसके बच्चों को मुक्ति देती है। नफी ने इसका परिचय किताब के पहले अध्याय में किया है। भाग 20 में हम पढ़ते हैं, लेकिन देखो मैं नफी ये तुम्हें दिखाऊंगा कि प्रभु की दया उन सभी के ऊपर होती है जिनको वह चुनता है, क्योंकि उसका विश्वास उन्हें बचाने की शक्ति देकर उन्हें शक्तिशाली बना देता है। कई वर्ष कई वर्ष पूर्व मैंने एक व्यक्तिगत तरीके से जाना इस भाग के सच को व्यक्त होते हुए। मुझे ज्ञात हुआ कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे कितने पास है और कितनी इच्छा रखते हैं हमारी मदद करने की। एक शाम जैसे ही रात हो रही थी, मैं गाड़ी चला रही थी और बच्चों के साथ मैंने एक लड़के को देखा जो कि अकेले ही सुनसान सड़क के किनारे चल रहा था। उसके पास निकलने के बाद मुझे एक अलग धारणा हुई कि हमें पास जाकर मदद करनी चाहिए, परंतु चिंता से वह डर जाएगा। एक अजनबी को रात में खींचकर अपने पास बिठाकर मैं गाड़ी चलाती रही। वह मजबूत धारणा फिर से मेरे दिमाग में आए शब्द डालते हुए, जाकर उस लड़के की मदद कर। मैं वापस उसके पास गई और उससे पूछा, क्या तुम्हें मदद की आवश्यकता है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें मदद चाहिए। वह मेरी ओर मुड़ा और गालों पे आंसू बहा कर बोला, करेंगी आप? मैं प्रार्थना कर रहा था कि कोई मेरी मदद करे। उसकी मदद के लिए प्रार्थना का जवाब प्रेरित होकर मुझे आया। यह अनुभव इतने साफ निर्देशों से प्राप्त हुआ था, आत्मा से जितने मेरे मन पर ना भूलने वाले निशान छोड़े जो आज भी हैं। और आज 25 वर्षों के बाद उसकी कृपा से कुछ ही महीनों पहले मैं इस लड़के से जुड़ी। मैंने पाया कि यह अनुभव सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, उसकी कहानी भी है। डेरिक नैंस अब एक पिता है, उसका एक अपना परिवार है। वह भी इस अनुभव को कभी नहीं भूला और हम दोनों ने इसे इस्तेमाल किया अपने बच्चों को सिखाने में कि परमेश्वर हमें देख रहा है, हम अकेले नहीं हैं।
On that night, Derek has stayed.
मदद की है विश्वास की नींव उसके डालने में। एक युवा किशोर होने से उसने आत्मविश्वास कि वह घर पहुंच जाएगा, सो वह चलने लगा। उसे एक सुनसान सड़क पर अकेले चढ़ते हुए 1.5 घंटे बीत गए थे। अभी भी घर से मिलो दूर और कोई घर ना दिखते हुए वह डर गया। निराशा से मैंने बजरी के गेड़ के पीछे जाकर घुटनों पर स्वर्गीय पिता से मदद मांगी। कुछ ही मिनटों में जब डेरिक सड़क पर वापस आया, मैं रुकी और उसे मदद प्रदान करने के लिए उससे प्रार्थना की। और आज इतने वर्षों बाद डेरिक विचारता है, प्रभु मेरे पति सचेत था एक पतले से अदूरदर्शी लड़के के, और इस दुनिया में सब कुछ होते हुए भी वह मेरी स्थिति से जागरूक था और मुझे इतना प्यार करते हुए मेरे लिए मदद भेजी। प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कई बार दिया है। उस सड़क किनारे परित्याग के बाद उनका जवाब हमेशा तुरंत साफ नहीं होता, परंतु मेरे लिए आज कितना जागरूक है जितना कि वह अकेली रात में था। जब भी जीवन के अंधकार में दुनिया को ढक देते हैं, मैं जानता हूं कि उसके पास मुझे घर वापस सुरक्षित लाने के लिए एक योजना है। डेरिक ने कहा, हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, परंतु हमारा पिता हमें सच में जानता है और वह सुनता है हमारे मन की बात को। वह पूरा करता है अपने चमत्कारों से एक एक प्रार्थना, एक मनुष्य एक समय में। हम विश्वास करते हैं कि वह हमारी मदद करेगा। कोई आवश्यक नहीं उस हम जैसा चाहते हैं, परंतु उस मार्ग से जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपनी इच्छा उसे देना मुश्किल हो सकता है, परंतु यह आवश्यक है उसके जैसा बनने के और शांति पाने के लिए जो वह हमें प्रदान करता है। हम महसूस करते हैं जैसा कि सी.एस. लुईस ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि मैं खुद से अपनी मदद नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता हर समय मेरे अंदर से प्रवाहित होती है, जागते और सोते। यह परमेश्वर को नहीं बदलती, मुझे बदलती है। धर्मशास्त्रों में बहुत से विवरण देखे गए हैं उनके जिन्होंने अपना विश्वास प्रभु में डाला, उनकी मदद की और उन्हें उस तरह से मुक्त किया। युवा डेविड के बारे में सोचें, जो कि गोलियत के ताकतवर हाथों द्वारा एक निश्चित मृत्यु से बचा सिर्फ प्रभु पर निर्भर होकर। नफी पर विचार करें, जिसके परमेश्वर से प्रतिपादन ने उन दोनों से निकाला जिसमें वह जकड़ा हुआ था। याद करें युवा जोसेफ स्मिथ को, जिन्होंने प्रार्थना पूर्वक प्रभु की मदद ली। उन्होंने मुक्त किया गया, अंधेरे की शक्तियों से और एक चमत्कारी उत्तर प्राप्त हुआ था। हर एक ने सच्चाई को और मुश्किल चुनौतियों का सामना किया। हर एक ने विश्वास से कार्य किया और प्रभु से भरोसे को डाला। हर एक को उसकी मदद प्राप्त हुई और आज हमारे दिनों में परमेश्वर की शक्ति और प्रेम उसके बच्चों के जीवन में प्रदर्शित होता है। मैंने हाल में ही जिम्बाब्वे और बोस्वाना के विश्वास से भरे संतों के जीवन में देखा। छोटे से चिवड़ियो शाखा की उपवास और गवाही की सभा में मैं दिन और प्रेत हुई बच्चे युवा और प्रौढ़ की गवाहियों से हर एक बात रहा था प्रभु यीशु मसीह में विश्वास का शक्तिशाली प्रभाव। चुनौतियों और मुश्किल परिस्थितियों से गिरे होने पर भी वो हर दिन अपना विश्वास परमेश्वर में डालकर जीते हैं। जो दृढ़ गवाहियों उन्होंने दी उसके विश्वास को दर्शाता है। वो स्वीकार करते हैं उनका हाथ अपने जीवन में उस वाक्य को कहकर मैं बहुत आभारी हूँ परमेश्वर का। कुछ वर्षों पहले एक विश्वासी परिवार ने हमारे वार्ड के सदस्यों के लिए समान विश्वास में प्रभु में अपना उदाहरण दिया। आर्न और वेनिटा गैट्रेल अपने परिवार के साथ एक खुशी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। आर्न का सफल व्यवसाय था और उसको कैंसर हुआ। उसके पास कुछ हफ्ते थे जीने के। उनका परिवार एक आखिरी बार इकट्ठा होना चाहता था तो उनके सारे बच्चे इकट्ठा हुए कुछ दूर स्थानों में। उनके पास सिर्फ कीमती घंटे थे रहने के लिए। गेट्रेल ने ध्यान से यह सब करने के लिए चुना जो उनके लिए महत्वपूर्ण था। एक पारिवारिक तस्वीर, एक पारिवारिक रात का खाना और एक सॉल्ट लेक मंदिर का सत्र। वेनिटा ने कहा, जब हम मंदिर के दरवाजों से बाहर आए वह आखिरी पल था, हम सबका जीवन मेल एक साथ। परंतु वो सब आश्वासन के साथ किए गए कि उनके लिए और भी बहुत है केवल इस जीवन के अलावा। पवित्र मंदिर के अनुबंधों की वजह से उन्हें आशा है परमेश्वर के वादों में वो सब हमेशा के लिए एक साथ हो सकते हैं। अगले 2 महीने आशीषों से भरे थे इतने कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। और न वेनिटा का विश्वास और भरोसा प्रभु में बढ़ रहा था जैसा कि वेनिटा के शब्दों से स्पष्ट था। मुझे उठाया गया, मैंने सीखा कि घबराहट होने पर भी हम शांति महसूस कर सकते हैं। मैं जानती थी कि प्रभु हमें देख रहा है। यदि तुम प्रभु में विश्वास करते हो तो तुम सच में अपने जीवन की हर चुनौती पर काबू पा जाओगे। उनकी एक पत्र ने जोड़ा, हमें अपने माता पिता को देखा, उनके उदाहरण को देखा, हमने उनका विश्वास देखा और यह भी उन्होंने किसी तरह से उसे संभाला। मैंने कभी भी इस तरह से इस परीक्षा को नहीं मांगा होगा, परंतु मैं इससे पीछे हटना भी नहीं चाहती थी। अवश्य ही आर्न का चले जाना इसका निष्कर्ष नहीं था जो कि गेट्रेस ने आशा की थी, परंतु उनका संकट विषय का समय नहीं था। यीशु मसीह का सुसमाचार चीजें करने की सूची नहीं है जबकि यह हमारे मनों में रहती है। सुसमाचार बोझ नहीं है, यह पंख है, यह हम उठा सकते हैं। इसने गाट्रेस को उठाया, उन्हें तूफान की भी शांति महसूस हुई। उन्होंने एक दूसरे को जोर से पकड़ा और मंदिर के अनुबंधों को जो उन्होंने किए और रखे थे वो बढ़ते गए अपनी क्षमता में प्रभु में भरोसा रख और दृढ़ हुए अपने विश्वास में यीशु मसीह में और उसके प्रायश्चित की शक्ति में। हम अपने आप को जब अपनी शिष्यता के मार्ग पर पाएं, जो भी हमारी चिंता और चुनौतियां शायद जैसे डेरिक अफ्रीका के संत और गेट्रेस परिवार हम चुन सकते हैं परमेश्वर के हाथ पहुंचने की। परमेश्वर के हाथ तक पहुंचने की अपनी आवश्यकता में हम चुनौती का सामना प्रार्थना और प्रभु में भरोसा रख सकते हैं और इस प्रक्रिया में हम उनकी तरह बनते हैं। प्रभु हम सबसे बोलता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से संभालूंगा। मैं विनम्रता से अनुकरण करती हूँ, विशेष गवाह कि हमारे पिता हमें जानता है और हमारी मदद के लिए पहुंचता है। उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह कि हम इस दुनिया की चुनौतियों पर काबू पा सकें और घर सुरक्षित पहुंच सकें। हम में विश्वास हो उस पर भरोसा करने का, यीशु मसीह के नाम में ये मेरी प्रार्थना है, आमीन।
The choir and congregation will
और अब गायक मंडली और कलीसिया मिलकर साथ खड़ी होकर गाएंगी Teach me to walk in the light। हम उसके बाद बिशप गैरी ई स्टीफेंसन गिरजा के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष को कृपया करके सुनेंगे। इनके पश्चात एल्डर डेविड ए बेडना बरारा पौरित के परिषद से होंगे। डेविड बेडनार के समापन टिप्पणी के बाद गायक मंडली गाएगी अ चाइल्ड्स प्रेयर.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Recent Olympic Winter Games in Thrall.
के ओलंपिक विंटर खेलों में संसार को मोहक करने वाले खिलाड़ियों ने 79 देशों के नेतृत्व को 98 भिन्न भिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया था. विशेष रूप से उनमें से 10 खिलाड़ी अंतिम दिनों के यीशु मसीह के सदस्य थे. उनमें से 3 ने तबके हासिल किए थे. क्रस्टफोर फोगट नोएल पिको स्पेस और टोरा ब्राइट हमें उन्हें बताई देते हैं. शाबाश. इन खेलों ने आज सुबह मेरे विचारों को युवा पुरुष युवतों और युवा अकेले वयस्कों की ओर ले गए. आपको नाजुक वर्षों में हैं जो आपके जीवन की दिशा तय करते हैं. मैंने आपको संबोधित करने की आवश्यकता को महसूस किया कर लिया है. आपके लिए उस अत्यावश्यकता को महसूस करना है. मैं आपसे नोएल पिकोस पेस की कथा को बांटता हूँ. उनमें से एक अंतिम दिनों की खिलाड़ी नोएल के कार्यक्रम में खिलाड़ी अपना गति मात्र बना लेते हैं जैसे ही वह दौड़ते हैं और फिर ताकत के साथ निकलते हैं. एक छोटे प्लेस पर अपने मुंह को बर्फ से कुछ इंच ऊपर रखकर वह दौड़ते हैं नीचे की और तेजी से बर्फीले ट्रैक पर जो कि मील प्रति घंटे की रफ्तार की होती है. विशेष रूप से सालों का अभ्यास विचार योग्य होता है. सफलता हो या निराशा 60 सेकंड की 4 गंभीर जगह के बीच समय में हुआ था. नोएल के पिछले ओलंपिक के सपने खत्म हो गए थे जबकि एक बुरी दुर्घटना ने उसे एक टूटे हुए पैर से छोड़ा. प्रतियोगिता में ना भाग लेने के लिए कि ओलंपिक के उसके सपने को पूरा नहीं कर पाए. 10 साल में एक सेकंड ने उसे पदक से बाहर कर दिया. क्या आप उसकी उत्सुकता की कल्पना कर सकते हैं? उसने जो महसूस की थी जैसे वह 2014 ओलंपिक में अपना प्रथम भाग लेने के लिए इंतजार करती थी. सालों की मेहनत सिर्फ एक चांदी के चरम बिंदु थी. उसने कई वर्षों तक तैयारी की थी उन 4 मिनटों के लिए और वह पूरा जीवन उसके प्रतिबिंब में बीत जाएगा। नोएल की आखिरी दौड़ पूर्ण दोष रहित थी। हम कभी नहीं भूलेंगे उसके कदमों को जो अपने परिवार को गले लगाने के लिए जब उसने अंतिम रेखा को पार कहा। हमने कर लिया, सालों की मेहनत रंग लाई। हमने उसके गले में अपने चांदी के पदक के साथ उसकी युवती पदक भी उसी के साथ देखा। शायद यह अनुचित था कि नोएल के संपूर्ण ओलंपिक के सपने उन पर निर्भर थे जो उसने संक्षिप्त 3 नाजुक मिनटों में किए थे, परंतु वह जानती थी और इसलिए उसने अति मेहनत की थी कि उस परिणाम की अनुभूति हुई। उन 4 मिनटों की अत्यावश्यक की और क्या उनका महत्व होगा उसके बाकी के जीवन पर। हम याद करते हैं कि क्रिस्टल फोगर्ट टीम का एक सदस्य जिसने कांस्य पदक जीता पुरुषों की दौड़ को, जबकि वह चाहता तो 2010 ओलंपिक को छोड़ देता बुरी तरह हारने के बाद, परंतु उसने हार की मानी कि बेहतरीन विमोच के बाद उसने यह उपहार जीता कि उसने परिश्रम से तलाशा। अब विचार करें कि कैसे आपका मार्ग अनंत जीवन और उन खिलाड़ियों के समान है। आप एक अनंत प्राणी हैं। आपके पैदा होने से पहले आपका अस्तित्व एक आत्मा का था। प्यारे स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में आपने सीखा और तैयार किया अपने अवसर को इस धरती पर संक्षिप्त समय के आने के लिए और हाँ प्रदर्शन के। ये जीवन आपके 4 मिनट है। आपकी यह है आपके कार्य निश्चित करेंगे अनंत जीवन का उपहार। भविष्यवक्ता एमुएल ने विवरण दिया, यह समय परमेश्वर से मिलने के प्रति है। जीवन का समय परिश्रम करने के लिए है। मेरी समझ में आपके 3 मिनट शुरू हो चुके हैं, घड़ी चल रही है। प्रति पॉल के वचन कितने उपयुक्त लगे, दौड़ में भागो कि तुम उपहार प्राप्त कर सको। उसी के समान कि कुछ कदम एक ओलंपिक खिलाड़ी के संक्षिप्त प्रदर्शन के लिए विशेष एक कर जरूरी है। स्केटर्स और स्नोबोर्डर्स के लिए कूदना या नीति स्लीज दौड़ का समझौता है या उन सालों जैसे हमारे जीवन में है जहाँ कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। जांच के चिन्ह जो हमें इस धरती पर ले जाते हैं आत्मिक प्रगति की और आत्मिक मार्कर आवश्यकता है। परमेश्वर के दिए हुए सुसमाचार धर्म विधि में बत्तीसवा पवित्र आत्मा की भेंट पुरोहित मंदिर के धर्म विधि एक हफ्ते प्रतिभोज लेना। इन धर्म विधियों में ईश्वर की शक्ति का समर्थन है और उसी तरीके से जिस अनुशासन के परीक्षण की तैयारी और योग्यता के से एक खिलाड़ी को उसका खेल प्रदर्शन तत्व को उच्च स्तर पर ले जाता है, आज्ञाओं का पालन करना आप एक प्रदर्शन और धर्म विधियों में भाग लेने के लिए योग्यता करता है। क्या आप संवेदना की संपूर्णता को समझते हैं, मेरे युवा मित्रों? जहाँ कहीं अभी आप अपने 4 मिनट का प्रदर्शन करते हैं, मैं आपसे चिंतन करने का आग्रह करता हूँ। मुझे क्या क्या करने की जरूरत है? अपना अलग पदक सुनिश्चित करूँ? शायद इस संवेदन के दौरान आत्मा ने आपको फुसफुसाया कि वो क्या हो सकता है। आपके भविष्य में एक धर्मविधि की अधिक उद्देश्य पूर्ण तैयारी करनी है या एक धर्मविधि को प्राप्त करना है जो कि आपको बहुत समय पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। जो भी आपका अगला कदम हो सके उसे ले लो, उसे कभी अभी करो, इंतजार मत करो। आपके 4 मिनट शीघ्रता से चले जाएंगे और आपके पास बाकी की अनंतता होगी ये सोचने के लिए कि आपने जीवन भर क्या किया। आत्मानुसार की जरूरत है। दैनिक प्रार्थना, धर्मशास्त्र पढ़ना और गिरजा जीना नींव होनी चाहिए। हमारे परीक्षण की एक लगातार आदर्श है। आज्ञाओं का पालन करना, रखे अनुबंधों को जो अपने बनाए हैं और अनुसरण करे प्रभु के स्तर को जो पाया जाता है। शायद आपने महसूस किया होगा कि उन चीजों के विषय में जो आपकी आत्मिक प्रगति को धीमा या बंद करने का खतरा हो सकता है। यदि ऐसा है, पॉल की सलाह के अनुसरण करें और उलझाने वाले पाप को दूर के वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। अभी भी पश्चाताप करने के लिए देर नहीं हुए, परंतु जल्दी हो जाए क्योंकि कोई भी नहीं जानता हमारे 4 मिनट कब खत्म हो जाएंगे। आप अपने को सोच रहे होंगे मैंने तो खत्म कर दिया, मेरे चार मिनट तो आपदा है, मैं तो इन्हें हार मानती हूँ। यदि ऐसा है तो ऐसा सोचना बंद करें और फिर ऐसा कभी न सोचे। प्रायश्चित के चमत्कार से आप अपनी प्रगति में खामियों को बना सकते हैं। आप याद रहे, आप अकेले नहीं हैं। उधारकर्ता ने वादा किया है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके पास परिवार के सदस्य हैं, मित्र मार्ग हैं जो आपके प्रोत्साहन दे रहे हैं। यद्यपि मेरी टिप्पणी है, काफी मात्रा में गिरजे के युवा को ये माता पिता और दादा दादी के लिए मैं निम्नलिखित देता हूँ। हाल ही में एल्डर बेंसन ने विवरण दिया एक सरल तरीके से परिवार का मूल्यांकन करने के लिए, जिससे अनुबंधों के मार्ग पर आवश्यक धर्मवादियों के द्वारा प्रगति के निशान लग सके। केवल एक कागज के पन्ने की जरूरत है जिसमें दो खाने हो, नाम और योजना अपने अगले या आवश्यक धर्मविधि की। मैंने ये हाल ही में किया, परिवार के हर सदस्य का नाम लिखकर उनमें मैंने ध्यान दिया कि उन्हें नन्हे पोते पर, जिसे जल्द ही आशीष करना है, एक 6 साल का पोता जिसे 32वें के लिए आवश्यक है तैयार करना, और एक पुत्र जो कि साल का हो रहा है जिसको पुरोहित के लिए तैयार करना है, और मंदिर एंडोमेंट आवश्यक है। ये सरल कार्य ने मुझे मदद की मेरे कुलपति की भूमिका में, ताकि मैं परिवार के हर एक सदस्य की मदद कर सकूं अनुबंध के मार्ग में हर एक के लिए एक कार्य योजना बनाकर। शायद ये सुझाव आपके लिए है जो कि परिवार विचार विमर्श तैयारी और आमंत्रण कर सकता है आवश्यकता को धर्मवित परिवारों में। जैसे कि मैं खुद एक और मैं प्रभावित हूँ, उस 4 मिनट के चांदी का पदक के जीत के एक LDS खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया टोरा ब्राइट स्नोवर्ट आधा पाइप मुकाबला, उसने संसार में दौड़ पूर्ण दोष रहित की और अंतिम कर्तव्य बैकसाइड रूडियो 720 से प्राप्त किया, परंतु प्रभावित और अचंभा था उसका ईश्वरीय प्रेम अपने प्रतियोगिता के प्रति। उसने देखा कि अमेरिकन स्नोबोर्ड केली क्लार्क, जिसका आखिरी मुकाबला बुरा रहा, घबरा गई और दूसरे भाग में उसने मुझसे गले लगा लिया, मुझे शांत किया और मेरी सांस धीमी हुई। अच्छा था किसी मित्र से गले लगना। केली क्लार्क ने टोरा को कान से पदक में जीते हुए में साथ दिया। जब पूछा गया कि यह दया का अनूठा कार्य अपने विरोधी के प्रति, जो कि उसके चांदी का पदक को मुश्किल में डाल सकता था, टोरा ने कहा, मैं एक प्रतियोगी हूँ और अच्छा करना चाहती हूँ, परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरी विरोधी भी अच्छा करे, और यही दिमाग में रख कर कि किसी प्रोत्साहन नहीं चाहिए। परिवार के सदस्य एक मित्र है, एक कक्षा का साथी और गौरव का साथी, आप इनकी मदद कैसे कर सकते हैं 4 मिनट में। प्यारे दोस्तों, आप बीच में एक उल्लापूर्ण यात्रा में कुछ तरह से आप दौड़ में हैं, आधे पाइप और स्लेज ट्रैक पर, और यह चुनौती से भरा रहा मोड़ पर हो सकता है। याद रखो, अपने मिलोनियन की तैयारी की है या आपके 4 मिनट है, समय कब है। मैं अपना भरोसा आपकी क्षमता में रखता हूँ, आपकी तरह संसार का उद्धार करता है। यदि आप उसकी मदद लेंगे, अनुसरण करेंगे, उसके आप कर सकते हैं। मैं अपनी गवाही से नमन करता हूँ उन आशीषों से हमें जीवित भविष्यवक्ता से अध्यक्ष पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
I have a dear friend who in the early years.
मेरा एक प्रिय दोस्त है जिसने अपने विवाह के शुरू के वर्षों में एक पिकअप ट्रक की जरूरत को समझा। उसकी पत्नी जानती थी कि उसे पिकअप ट्रक की आवश्यकता नहीं है, वह सिर्फ एक नई गाड़ी खरीदना चाहता था अपने परिवार और अपने लिए। एक हंसी मजाक की भारी बातचीत ने इस पति और पत्नी के बीच बहस खरीदने के फायदे और नुकसान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रिय, हमें 4-व्हील ड्राइवर की जरूरत है। पत्नी ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें नया पिकअप ट्रक चाहिए। उसने उसका प्रश्न का उत्तर दिया एक महत्वपूर्ण जवाब से, यदि हमें अपने बच्चों के लिए घोर तूफान से दूर लाना है और दुकान जाने का साधन सिर्फ पिकअप ट्रक ही है तो
His wife replied with a smile.
उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि हम नया ट्रक खरीदते हैं तो हमारे पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो आपात स्थिति में दुकान जाने की चिंता क्यों करें? समय के चलते उन्होंने निर्णय लिया और ट्रक खरीदने का सोच लिया। नया वाहन खरीदने के पश्चात मेरा दोस्त उस ट्रक की उपयोगिता दिखाना चाहता था और उसने खरीदने के कारण को मानवना चाहता था। उसने निर्णय लिया कि वह जलाऊ लकड़ी को काटने का और घर लाने का काम करेगा। साल का पतझड़ था और पहाड़ों में बर्फ गिरी हुई थी। जहां वहां लकड़ी खोजता, जैसे वह पहाड़ों पर गया, बर्फ गहरी होती चली गई। मेरे दोस्त ने सड़क पर फिसलना महसूस किया, लेकिन वह ट्रक पर विश्वास के साथ बढ़ता गया। दुर्भाग्यवश से मेरा दोस्त बर्फीले रास्ते पर बहुत दूर जा चुका था। जैसा ही वह उस स्थान की तरफ मोड़ा जहां से लकड़ी काटनी थी, वह फंस गया। गाड़ी के चारों पहिए बर्फ में फंस चुके थे। उसने महसूस करा कि उससे नहीं पता था कि इस खतरनाक परेशानी के लिए कैसे निकलें। वह घबरा गया और परेशान था। मेरे दोस्त ने निर्णय लिया, मैं यहाँ पर बैठा नहीं रहूंगा। वह वाहन से बाहर निकला और लकड़ी काटने लगा। उसने ट्रक का पिछला हिस्सा लकड़ी से भर दिया और उसने बाद में मेरे दोस्त ने ठान ली कि वह बर्फ के बाहर निकलने का एक बार प्रयास करेगा। जैसे ही ट्रक को पहले गियर में डाला, ताकत लगाई, थोड़ा आगे बढ़ा। धीरे धीरे ट्रक बर्फ से बाहर आ गया और सड़क पर वापस आ गया। वह एक खुश और दीन व्यक्ति आखिर में घर जाने के लिए आजाद था। मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे जब मैं अपने दोस्त की इस कहानी से सीखने गए आत्मविश्वास पाठ पर जोर डालता हूँ। वह लकड़ी के भार के कारण ही ट्रक से खिंचाव मिला, जिसने कारण बर्फ से निकला गया। सड़क पर वापस जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वह भार के कारण ही अपने घर और परिवार के पास जा पाया।
That enabled him to return to his family and to his home. Brothers and sisters, each of us also carries a load.
हम में से प्रत्येक बोझ उठाएं। हमारा व्यक्तिगत बोझ में मांग और मौके में जिम्मेदारी और सुविधा, कष्ट और आशीष और चुनाव और बाधाएं शामिल हैं। दो मार्गदर्शन जैस करने वाले प्रश्न हमारे बोझों का समय समय पर प्रार्थना पूर्वक आंकलन करने में मदद करते हैं। क्या बोझ जो मैं उठाया हूँ उसमें आत्मिक खिंचाव को पैदा कर रहा हूँ और मुझे सीधे और सरकारी मार्ग पर मसीह में विश्वास के साथ आगे बढ़ने में योग्यता बनाता है? क्या मैं बोझ उठाया हूँ इतना आत्मिक खिंचाव उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है जो मुझे अंततः स्वर्गीय पिता के पास वापस घर पहुंचा सकता है? हम कभी गलती से ये मान लेते हैं कि भार का ना होना खुशी की बात है, लेकिन भार को सहन करना सुख की योजना का एक महत्वपूर्ण और जरूरी हिस्सा है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत भार जरूरी है। आत्मिक खिंचाव के लिए हमारा ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में उस आकर्षक मार्ग बेकार के काम नहीं करने चाहिए जो हमें महत्वपूर्ण कार्य करने से विचलित करते हैं। उद्धारकर्ता ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मैं मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मान से मैं दीन हूँ, और तुम अपने मन को विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जुआ एक लकड़ी का डंडा होता है जो दो बैल या दो जानवरों के साथ भार खींचने के लिए लगाते हैं। जुआ जानवरों को एक दूसरे के साथ रखता है ताकि वे दोनों एक साथ चलकर कार्य पूरा कर सकें। विचार करने परमेश्वर में के मेरा जुआ अपने ऊपर लो के निमंत्रण पर पवित्र नियम बनाना पवित्र नियम बनाना और उन पर चलना हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ता है। उद्धारकर्ता हमें से कहता है कि हमें उस पर निर्भर होना चाहिए और उसके साथ चलना चाहिए। हालांकि हमारी कड़ी मेहनत उसके साथ नापी नहीं जा सकती, हम उस पर विश्वास करते हैं और अपना भार उसके साथ उठाते हैं। उसका जुआ आसान और उसका भार हल्का होता है। हम अकेले नहीं हैं और ना ही होंगे। आवश्यकता है हम अपनी हर रोज की जिंदगी में स्वर्गीय मदद के द्वारा आगे बढ़ते हैं। उद्धारकर्ता के प्रशित के द्वारा हम अपने से ज्यादा योग्यता और शक्ति पा सकते हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, अपनी यात्रा जारी रखो और अपने हृदयों को आनंदित दो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हमेशा रहूंगा। मार्मन की पुस्तक अम्लोन आत्मा और उसके लोगों के साथ सताने के एक उदाहरण पर विचार करें। शिष्य जब दुखी थे तो उसके पास प्रभु की आवाज आई, अपने सरों को उठाओ और दिलासा ग्रहण करो, क्योंकि मैं उस अनुबंध को जानता हूँ जो तुमने मेरे साथ बनाया है, और मैं अपने लोगों के साथ अनुबंध करूंगा और उन्हें गुलामी से मुक्त करूंगा। ध्यान दे, अनुबंधों की महत्वपूर्ण बात मुक्ति का वादा है। बनाए गए अनुबंध और उनका ईमानदारी से पालन करना और विधियों का सही परित्य द्वारा उपयोग होना प्रायश्चित के द्वारा अपने वाली आने वाली आशीषों के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रवृत्तियों की विधियों के ईश्वर की शक्ति नर नारी पर नर वृक्षता में प्रभाव करती है, प्रायश्चित की आशीष होती है। उदाहरण के कथन को याद रखें, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जब हम आलमा और उसके लोगों के विवरण को अपनी अगली आयत में विचार करते हैं, और मैं उस बोझ को हल्का करूंगा जो तुम्हारे कंधों पर लादा जाता है, कि गुलामी में होते हुए भी तुम इन्हें अपनी पीठ पर महसूस नहीं करोगे। हम में से बहुत से लोग इस धर्मशास्त्र को यह सलाह समझते हैं कि अचानक और हमेशा के लिए बोझ दूर किए दिए जाएंगे। हालांकि अगली आयत बताती है कि बोझ कैसे हल्का होगा। और जब ऐसा हुआ कि जो बोझ आलमा और उसके भाइयों के ऊपर लादे जाते थे हल्के हो गए, हाँ, प्रभु ने उन्हें शक्ति दी कि वे अपने बोझों को सरलता से के साथ उठा सकें, और वे आनंद पूर्वक और धैर्य के साथ प्रभु की सभी इच्छाओं के अधीन हो गए। चुनौतियों और कठिनाइयों लोगों से तुरंत नहीं हटा ली जाती, लेकिन आलमा और उसके अनुयायियों को शक्ति दी गई और उनकी बढ़ी हुई क्षमता ने उनको बोझ को हल्का कर दिया। इन भले लोगों को प्रायश्चित के द्वारा कारक के रूप में कार्य करने के लिए और उनकी परिस्थितियों को प्रभावित करने की शक्ति दी गई, और प्रभु की शक्ति में आलमा और उसके लोगों को सुरक्षा जर्महेला के प्रदेश में जाने का निर्देश दे गया। यीशु मसीह के प्रायश्चित न केवल आदम के पतन और प्रभावों पर विजय पाता है और हमारे व्यक्तिगत पापों और उल्लंघनों की क्षमा संभव करता है, बल्कि उसका प्रायश्चित हमारे लिए अच्छा करना और इस तरह से बेहतर बनाना संभव करता है जो कि हमारे नश्वर क्षमताओं से अधिक है। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि कब हम गलत करते हैं और कब हमारे जीवन में पाप का प्रभाव को दूर करने की जरूरत है। उद्धारकर्ता ने इसे अपनी मुक्ति की शक्ति के द्वारा हमारे लिए संभव किया है। लेकिन क्या हम ये सभी समझते हैं कि प्रायश्चित उन विश्वसनीय नर नारियों के लिए है जो आज्ञाकारी, योग्य और ईमानदार है, और जो अधिक विश्वासी होकर बेहतर बनाने और सेवा करने का प्रयास करते हैं? मुझे आश्चर्य होता है यदि हम पूर्ण रूप से प्रायश्चित के इस शक्ति देने वाले प्रभाव को अपने जीवन में समझते हैं और गलती के यह विश्वास करते हैं कि हमें अपना बोझ अकेले उठाना चाहिए। पूर्ण दृढ़ता, इच्छा शक्ति और अनुशासन और स्पष्ट रूप से हमारी सीमित क्षमताओं के द्वारा एक बात है, यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया और उसने हमारे लिए अपनी जिंदगी गंवाई। उसके प्रायश्चित के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा हमें साहस देता है, सिर्फ हमारे मार्गदर्शन के लिए नहीं परंतु हमें मजबूत और चंगा करने के लिए। आलमा समझाता है कि क्यों और कैसे उद्धारकर्ता हमें समक्ष बनाता है, और वह पीड़ा और कष्ट और हर प्रकार के प्रलोभन झेलेगा, और ऐसा इसलिए होगा ताकि वचन पूरा हो सके जिससे अनुसार वह अपने लोगों की पीड़ा और बीमारी को अपने ऊपर ले सके, और वह अपने ऊपर मृत्यु को लेगा ताकि वह मृत्यु के बंधन को खोल सके और जो उसके लोगों को बांधे हुए हैं, और वह अपने ऊपर उनकी दुर्बलताओं को लेगा ताकि मानव शरीर के अनुसार उसका कटोरा दया से भर सके, इसलिए शरीर के में जान सके कि प्रकार दुर्बलता के अनुसार अपने लोगों को सहायता कर सकेगा। इसलिए उद्धारकर्ता ने सिर्फ हमारे पापों और अन्यायों को नहीं सहा, परंतु हमारी शारीरिक पीड़ा और कष्ट, हमारी कमजोरी और कमियां, हमारा डर और निराशा, हमारी मायूसी और उत्साह भंग, हमारा खेद और पछतावा, हमारी उदासी और हमारी आशाहीनता, अन्याय और हानि जिसे हम अनुभव करते हैं, और भावुक कठिनाइयों जो हमें रोकती हैं, कोई भी शारीरिक पीड़ा, आत्मिक घाव, आत्मा की वेदना या दिल का दर्द, दुर्बलता कमजोरी नहीं है जो आपने या मैंने नश्वरता में अनुभव की हो, जिसे उद्धारकर्ता ने अनुभव नहीं किया। दुर्बलता के क्षण हम करहा सकते हैं, कोई इस दर्द को नहीं जानता, कोई इससे नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर का पुत्र अच्छी तरह जानता और समझता है, क्योंकि उसने हमारे व्यक्तिगत दुखों को महसूस किया और सहा था, और उसके असीमित और अनंत बलिदान के कारण उसके पास परिपूर्ण करुणा है, और वह अपनी दया की बाहें हमारी ओर फैला सकता है। वह हमें तक पहुंचता है, स्पर्श करता है, राहत देता है, चंगा करता है और शक्ति देता है, इतनी अधिक जितना कि हम स्वयं को कभी न दे पाए यदि हम केवल अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हैं। सचमुच में उसका जुआ सहज है और उसका बोझ हल्का है। निमंत्रण प्रतिज्ञा और गवाही। जब मैं आपको उद्धारकर्ता के बलिदान के बारे में अध्ययन, प्रार्थना, मनन सीखने का प्रयास का निमंत्रण देता हूँ। बलिदान के बहुत सी बातों की कल्पना मात्र हमारे नश्वर मन नहीं रख सकते। मेरे मित्र के लिए लकड़ी का भार ने जीवन बचाने का खिंचाव उपलब्ध कराया था। खाली ट्रक बर्फ के आगे नहीं बढ़ सकता था, बेशक वो फोर व्हीलर ड्राइव था। खिंचाव पैदा करने के लिए भारी बहुत जरूरी था, बोझ के कारण ही ऐसा हो पाया। भार ने ही उसका खिंचाव देकर बर्फ से फंसने से बचाया, सड़क पर वापस लाया, आगे बढ़ाया और उसके परिवार से मिलवाया। हमारे जीवन में अलग अलग बोझ गुणों के कारण पवित्र मसीहा की दया और अनुग्रह पर भरोसा करने में मदद करते हैं। मैं गवाही देता हूँ और वादा करता हूँ, उद्धारकर्ता हमारे बोझों को सरलता से उठाने में मदद करेगा। पवित्र अनुबंधों के कारण जब हम अपने साथ मिलकर उठाया जाएगा और अपने जीवन में उसके बलिदान को योग्य शक्ति प्राप्त करते हैं, तो हम अधिकता से समझेंगे या प्रयास करेंगे, उसकी इच्छा अनुसार जीवन जाएंगे, हम बदलाव में सीखेंगे, क्षमता के लिए प्रार्थना करेंगे, परिस्थितियों और इसकी इच्छा अनुसार बदलने में परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करने के साथ परिवर्तित रहेंगे। हम कार्य करने के लिए उसके वस्तु के स्थान पर कार्य करने वाले कारक बन जाएंगे। हम आत्मिक खिंचाव से आशीषित होंगे। हम में से प्रत्येक उद्धारक के बलिदान के कार्य करें और बेहतर बने। इस विशेष और पवित्र सब्बत के दिन मैं अपनी गवाही को घोषणा करता हूँ कि यीशु ही मसीह का उद्धार करता है। वह जीवित है, वह हमें शुद्ध, चंगा मार्गदर्शन, सुरक्षा और शक्ति देगा है। इन बातों की मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में गवाही दूंगा.
I declare my witness that Jesus the Christ is our Redeemer.
Amen.
I testify he lives and will cleanse, heal, guide, protect, and strengthen us. Of these things I joyfully testify in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
हम गायक मंडली का मोहक संगीत के लिए जिसे उन्होंने प्राप्त कार्य कृतज्ञता से आभारी हैं. उस सभी वार्ताकारों का जिन्होंने समय हमसे वार्ता की है, उनका हार्दिक सराहना करते हैं। इस अभिदेशन के हमारे अंतिम वार्ताकार हमारे भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मंसन होंगे। अध्यक्ष थॉमस एस मंसन की टिप्पणी के बाद गायक मंडली गीत गाएगी, गाइड अस ओ ग्रेट यहोवा, और समापन प्रार्थना बहन नील एफ मेरिट युवतिया की जनरल अध्यक्ष के द्वितीय सलाहकार द्वारा दी जाएगी। प्रेसिडेंट मॉन्सन।
माय बेलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस समय हमारा उद्धारकर्ता मनुष्य के बीच सेवकाई कर रहा था, उससे एक वकील ने पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? मती यीशु के जवाब को लिखता है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मरकुस उदारकर्ता के कथन को निष्कर्ष इस प्रकार लिखता है, इससे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं है। हम परमेश्वर से वास्तव में प्रेम नहीं रख सकते यदि हम इस जीवन में जी रहे अपने साथ के लोगों के साथ प्रेम न रखें। उसी तरह अपने साथियों के साथ हम पूरी तरह प्रेम नहीं सकते यदि हम सब परमेश्वर के पिता परमेश्वर से प्रेम न रखें। प्रेरित यूहन्ना हमसे कहता है, हम उससे ये आगे हमें उससे मिले कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हम सब हमारे स्वर्गीय पिता के आत्मिक बच्चे हैं और इस प्रकार हम भाई और बहन हैं। इस प्रकार सच्चाई को मन में रखने से हमारे परमेश्वर लिए परमेश्वर के सभी बच्चों से प्रेम करना सरल हो जाता है। असल में प्रेम का मुख्य सार और यीशु मसीह हमारे उदाहरण का उदाहरण है। उसका जीवन प्रेम का विरासत है। रोगी को उसने चंगा किया, कुचलों को उसने उठाया, पापियों को उसने बचाया, अंत में क्रोधित भीड़ ने उसके प्राण ले लिए, और फिर भी गोलगता की पहाड़ी से ये शब्द गूंजे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। नश्वरता में दया और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण। बहुत सी विशेषताएं हैं जो प्रेम की अभिव्यक्तियां, जैसे दया, धैर्य, निस्वार्थ, समझ और क्षमा है। हमारे सभी संबंधों में ये और अन्य प्रकार की विशेषताएं हमारे हृदयों में प्रेम को एक दूसरे को प्रकट करने में मदद करेंगे। आमतौर पर हमारा प्रेम एक दूसरे के साथ प्रतिदिन के संबंधों में दिखाया जाता है। सबसे मुख्य यह है कि दूसरों की पहचानने की योग्यता और प्रतिक्रिया करना है। मैंने इस लघु कविता में दर्शकों को समझा कर रखा है, मैं रात को रोया नजर की कमजोरी के लिए, जिसने किसी की जरूरत के प्रति मुझे अंधा बना दिया। जीवन के इस मोड़ तक मैंने रत्ती भर भी दुख नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा अधिक दयालु रहा हूं। हाल ही में मुझे एक हृदय को छू लेने वाली प्रेमपूर्ण दया के उदाहरण से अवगत कराया गया था, जिसके अप्रत्याशित परिणाम हुए थे। 1933 का साल था जब एक महान मंदी के कारण रोजगार के मौके बहुत कम थे। यह जगह संयुक्त राष्ट्र का पूरे भाग था। एरलिन बेस्कर एक हाई स्कूल से पास हुई थी। रोजगार की लंबी खोज करने के बाद उसे कपड़े की मिल में दर्जन के काम की खोज की थी। कामगारों केवल उन कपड़ों की सिलाई के लिए भुगतान किया जाता था जो वे प्रतिदिन सही ढंग से सिलते थे। जितने कपड़े वे सिलते थे उतना अधिक उन्हें भुगतान किया जाता था। एक दिन मिल के शुरू होने के तुरंत बाद एरलिन को इस तरह का कपड़ा सिलने को मिला जिसे उसे उलझा दिया और परेशान कर दिया। वह अपनी मशीन पर कपड़े की सिलाई को बार बार उधेड़ती रही जिस पर वह काम कर रही थी। लगता कोई उसकी मदद के लिए नहीं था, क्योंकि बाकी सभी दर्जी अधिक से अधिक कपड़े सिलने में व्यस्त थे। एरलीन लाचार और निराश थी। वह चुपचाप रोने लगी। एरलीन के सामने बोर्निक रॉक बैठी थी। वह बड़ी और आधुनिक दर्जिन थी। एरलीन की परेशानी देखकर बर्निस ने सोचा, अपना काम छोड़ा और एरलीन की तरफ गई और प्यार से उसके निर्देश और मदद करने लगी। वह तब तक उसके साथ रही जब एरलीन को आत्मविश्वास नहीं आ गया और उसने कपड़े को पूरा नहीं सिल लिया। बेनिस ने तब अपनी मशीन पर वापस चली गई। वह उतने कपड़े नहीं सिल पाई थी जितना उसको सिल सकती थी यदि वह मदद करने नहीं जाती। इस प्रेम के एक काम से बर्निस और एरलीन जीवन भर के मित्र बन गए। दोनों की अंततः में शादी हुई और बच्चे हुए। 1950 में एक दिन बर्निस, जो कि गिरजे की सदस्य थी, एरलीन को और उसके परिवार को मॉर्मन की एक पुस्तक दी। 1960 में एरलीन और उसके पति और उसके बच्चे बपतिस्मा लेकर इस गिरजे के सदस्य बन गए। बाद में वे परमेश्वर के पवित्र मोहर बंद हुए थे। उस दया के परिणाम स्वरूप जो बर्निस ने अपने अविशेषता में डालकर दिखाया था, ऐसे व्यक्ति की मदद की थी जिसे वह नहीं जानती थी, लेकिन जो कि परेशान और मदद की जरूरत थी। अनगिनत लोग, जीवित और मृतित, अब सुसमाचार को बचाने वाली विधियों का आनंद उठा रहे हैं। एक हर दिन हमारे जीवन में ऐसे मौके दिए जाते हैं जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और दया का प्रदर्शन कर सकते हैं। अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने कहा था, हमें हमेशा याद रखना चाहिए जो लोग हमें पार्किंग स्थान, कार्यालयों में, लिफ्ट में या और कहीं भी मिलते हैं, उन लोगों का एक हिस्सा है जो परमेश्वर ने हमें प्रेम रखने और सेवा करने के लिए दिए हैं। यदि हम अपने इन आसपास के लोगों के भाई बहन के रूप में चिंता नहीं करते, तो मानव जाति के में भाईचारे की बात करने से हमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। अक्सर प्रेम का प्रदर्शन करने के हमारे मौके अचानक आते हैं। ऐसा उदाहरण एक दिन अक्टूबर 1981 में समाचार पत्र में के लेख में प्रकट हुआ था। उस समाचार के लेख के पड़ताए प्रेम और दया के बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने उस लेख की कतरन अपनी फाइल में 30 साल संभाल कर रखी। उस लेख में एंकरेज अलास्का में सिएटल से वाशिंगटन तक की एक नॉनस्टॉप फ्लाइट का जिक्र था जिसमें 185 यात्री थे, जो कि बुरी तरह से घायल एक बच्चे को लेने के लिए अलास्का के सुदूर शहर की ओर मोड़ दी गई थी। 2 साल के लड़के की बांह खून की नली कट गई थी और जब वह अपने घर के आसपास कांच के टुकड़े पर गिर गया था। यह शहर एंकरेज से 725 किलोमीटर दूर था। और अवश्य ही उड़ान की मार्ग पे भी नहीं था। फिर भी लड़के की मदद करने के लिए डॉक्टर ने जल्दबाजी में एक अनुरोध भेजा था, इसलिए उड़ान को इस बच्चे को सिएटल ले जाने के लिए उस शहर की ओर मोड़ दी गई थी ताकि बच्चे को अस्पताल में इलाज कर सके। जब उड़ान उस शहर में उतरी, डॉक्टर ने पायलट को बताया, बच्चे को इतनी बुरी तरह से खून निकल चुका है कि शायद वह सिएटल पहुंचने तक नहीं बच पाएगा। इसलिए निर्णय लिया गया कि उड़ान को दूसरी दिशा में 320 किलोमीटर अलास्का के एक अन्य शहर जानू, जिसको निकटतम हॉस्पिटल जहां पर था, ले जाया जाए। बच्चे को जेनयू को उड़ान सिएटल की ओर उड़ चली। अपने घर से अपने समय से घंटों लेट थी। एक भी यात्री ने शिकायत नहीं की, यद्यपि उनमें से बहुतों का काम का नुकसान हुआ। आगे जाने वाली फ्लाइट छूट गई। असल में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, यात्रियों ने लड़के और परिवार के बच्चों की मदद के लिए काफी धन जुटा लिया था। जब उड़ान सिएटल में उतरी तो यात्री खुशी से चिल्ला उठे जब पायलट ने घोषणा की कि उसे सूचना मिली थी कि वह लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे विचार में धर्मशास्त्र के शब्द आए, उद्धारकर्ता मसीह का सच्चा प्रेम है, और अंतिम दिन जिसमें भी यह पाया जाएगा उसके साथ भला होगा। भाइयों और बहनों, अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए हमारे महानतम मौके हमारे स्वयं के घरों की चार दीवारी के बीच में होंगे। प्रेम हमारे पारिवारिक जीवन का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता नहीं है। अत्यधिक बेचैनी होती है, अत्यधिक बहस होती है, लड़ाई होती है, अत्यधिक आंसू बहाए जाते हैं। दुखी गॉर्डन बींगली ने पूछा था, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि जिनसे हमें प्रेम रखना चाहिए वे बार बार हमारे कठोर शब्दों के शिकार बनते हैं? कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो लगता है मानो हम छुरी से, हमारे हाथ में छुरी और हम काटते हैं और उसको काटने को तैयार हो। इन प्रश्नों के उत्तर हमारे मन में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कारण चाहे कुछ भी हो, यदि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखने की आज्ञा पालन करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ दया और आदर का व्यवहार करेंगे। अवश्य ही ऐसे समय होंगे जब सुधार करने के लिए कार्रवाई की जरूरत हो। याद रखें, सिद्धांत में अनुबंध और सिद्धांत में पाई गई सलाह, जैसे जब हम अपने दूसरे में सुधार करने की जरूरत हो तो बाद में हमें उससे अत्यधिक प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए। मैं आशा करता हूं हम हमेशा अपने आसपास के लोगों और अनुभूतियों और विचारों और परिस्थितियों के प्रति शिष्टा और संवेदनशील होंगे। हम किसी का अनादर ना करें या अपमान ना करें, इसकी अपेक्षा हम दयावान और उत्साह देने वाले बने रहें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि लापरवाही से बोले गए शब्द या कामों के द्वारा दूसरे व्यक्ति की आत्मविश्वास को ठेस ना पहुंचे। प्रेम और क्षमा दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारे परिवारों में हमारे मित्रों के साथ भी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं और असहमत हो सकते हैं, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात कितनी छोटी क्यों ना हो। घाव को पकने, मवाद पड़ने और अंततः विनाश करने के लिए नहीं छोड़ा जाता और ना ही छोड़ा जाना चाहिए। आरोप लगाने से घाव खुला रहता है, केवल क्षमा करने से घाव भरता है। एक प्रिय महिला जिसका देहांत हो चुका है मुझे एक दिन मिली और अनापेक्षित ढंग से एक दुखों का बताया। उसने एक ऐसी घटना के विषय में बोला था जो बहुत साल पहले हुई थी। इसमें एक पड़ोसी एक किसान था जो कभी एक अच्छे मित्र थे, जिसके साथ वह और उसके पति कई मौकों पर मतभेद हो चुका था। एक दिन किसान ने पूछा था क्या अपने खेत में जाने के लिए वह उनकी संपत्ति से होकर रास्ता बना सकता था। मुझसे बात करते हुए वह थोड़ी देर के लिए रुकी और कंप कपाती हुई आवाज में बोली, भाई मॉनसन, मैंने उसे हमारी संपत्ति में से होकर जाने से हमेशा के लिए मना कर दिया और वह अपने खेत से जाने के लिए एक लंबा रास्ता जाना पड़ता था। मैं गलत थी और मुझे इस बात का दुख है। अब वह नहीं है, लेकिन हाय, काश मैं उसे कह पाती, मुझे बहुत दुख है। मैं सोचती हूं काश मुझे दया दिखाने का एक और मौका मिला होता। जब मैं उसकी बात को सुन रहा था, मेरे मन में जॉन ग्रीन लीफ विटर की एक दुखित वाक्य आया, सबसे दुखी शब्द जो बोले या लिखे जा सकते हैं उनमें से शायद सब्जा जो भिन्न, यदि हमने काम भिन्न तरीके से किया होता शायद हमारे जीन बहते होते। भाइयों और बहनों, जब हम दूसरों के साथ प्रेम और दया से व्यवहार करते हैं तो हम इस प्रकार के पछतावों से बच सकते हैं। प्रेम बहुत से जाने मनजाने तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, मुस्कुराकर, हाथ हिलाकर, दया की टिप्पणी से, प्रशंसा करके। अन्य भुगतियां अधिक जटिल हो सकती हैं, जैसे दूसरों के गतिविधि में सुरुचि दिखाना, किसी नियम को या दया को धैर्य से सिखाना, बीमार या बीमारी के कारण जो अब बिस्तर में है उनसे मिलना। ये शब्द और कार्य और अन्य बहुत से काम प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। डेल कार्नेगी, जो एक जाने पहचाने अमेरिकन लेखक और शिक्षक हैं, विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को निष्कपट प्रशंसा के कुछ शब्द बोलकर जो कि अकेला या निराशा हो संसार में कुल संख्या को बढ़ाने की शक्ति है। वह कहता है शायद आज बोले गए शब्दों को आप कल भूल जाएंगे, लेकिन जिन्हें इनसे बोला जाता है वह इन्हें जीवन भर याद रखेगा। मैं आशा करता हूं कि हम आज और अभी से परमेश्वर के सभी बच्चों में प्रेम व्यक्त करें, चाहे वे हमारे परिवार के सदस्य हों, हमारे मित्र हों, या मित्र जाने पहचान व्यक्ति हो या बिल्कुल अनजान व्यक्ति हो। जब हम सुबह उठते हैं तो हम निश्चय करें चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रेम और दया से जवाब देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जो प्रेम जो हमसे जो परमेश्वर हमले महसूस करता है वह इतना अधिक है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकती। उसने इस प्रेम के कारण अपने बेटे को भेजा जिसने उसे हमें इतना प्रेम रखा कि हमारा अपने जीवन अपने दे दिया ताकि हमें अनंत जीवन मिले। जितना अधिक हम इस अतुलनीय उपहार को समझते हैं हमारे हृदय में हमारे अनंत पिता के प्रति, हमारे उद्धारकर्ता के प्रति, संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम से भर जाते हैं। मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि हमारी ऐसी ही इच्छा हो। यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है और मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारी प्रार्थना हमेशा सुनता है। हमारे यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।
Our dear Father in heaven,
मेरे प्यारे स्वर्ग में विराजमान पिता, हम अपने सिर आपके आगे झुकाते हैं और उन अनुभूतियों को जो हमने इस कॉन्फ्रेंस में महसूस किए और अपने भविष्यवक्ता से जो अल्फाज हमने रिसीव किए, ताकि हम दूसरों को प्यार कर सकें, दूसरे की मदद कर सकें, हम बहुत शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के अटोनमेंट के लिए। हमें एक गहरी अनुभूति हो चुकी है। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम इस सम्मेलन से जाएंगे, हम उस प्यार, उस श्रद्धा को महसूस कर सकें आपके राज्य को इस दुनिया में बनाने के लिए। और इन सब बातें को मैं कहती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference. दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 184वां वार्षिक महासम्मेलन था. इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल अधिकारियों से चुने गए व्यक्तियों से संबोधित किया. संगीत मार्ब मंडप गायक मंडल द्वारा दिया गया था. इसका प्रसारण मार्बल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया बिना लिखित अनुमति के. इस कार्यक्रम की बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है.